ఓం నమః సిద్ధేభ్యః నమో అరిహంతాణం నమో సిద్ధాణం నమో ఆయిర్యాణం నమో ఉవజ్జాయాణం నమో లోయే సౌవసాహూనం ఏసో పంచ నమో యారో సౌవ పావపణాసనో మంగళానం చ సవ్వేషిం పఢమం హవై మంగళం పఢమం హవై మంగళం. పంచ పరమేష్ఠి భగవాన్ కీ, అహింసా పరమో ధర్మ కీ, ఆచార్య గురువర్ శ్రీ విద్యాసాగర్ ముని మహారాజ్ కీ, छठा प्रश्न चल रहा है। जैन धर्म की अपनी प्रमुख मौलिक विशेषताएं, प्रमुख और मौलिक। प्रमुख का अर्थ होता है मुख्य, मौलिक का अर्थ होता है मूल में, तल में, फाउंडेशन में, जो धर्म के सिद्धांत होते हैं और उनमें जो विशेषताएं पाई जाती हैं वो कैसे होती हैं, कौन हैं, इस प्रकार का यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यहां पर लिखा है अनेकांत, यह प्रमुख भी है और मौलिक विशेषता भी है। शाद्वाद सिद्धांत यह प्रमुख भी है और मौलिक भी है। अपरिग्रहवाद तो है ही, प्रसिद्ध है। अहिंसा इस धर्म का दूसरा नाम है, तो ये भी प्रमुख भी है और मौलिक भी है। वस्तु की स्वतंत्रता को यह जैन धर्म दर्शाता है, बतलाता है, प्रतिपादित करता है, इसलिए ये भी मौलिक है। और इन सबको प्रतिपादन करने के बाद जैन धर्म अंत में ये कह देता है कि कोई भी आत्मा मुक्त होने के बाद संसार में अवतार नहीं लेता, तो अवतारवाद का यह निषेध करता है। जिसको हम भगवान कहते हैं, भगवान भगवान होते हैं, वे संसारी नहीं बन सकते, संसार में अवतरित नहीं हो सकते, पुनः संसार दशा को धारण नहीं कर सकते। एक बार भगवान बन गए तो बन गए, पुनः सामान्य संसारी जीवों की तरह इस पर्याय में जन्म लेना उनको संभव नहीं है। इतनी सारी विशेषताएं हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अनेकांत का अर्थ कल के दिन समझ रहे थे। यह अनेकांत कितने प्रकार का है, ये प्रश्न उठता है। तो अनेकांत के भेद को भी हम यहां समझ सकते हैं। अनेकांत में दो भेद हैं, एक सम्यक अनेकांत और एक मिथ्या अनेकांत। ऐसे जैनागम में अनेकांत के दो भेद बताए, कौन कौन से? एक सम्यक अनेकांत और एक मिथ्या अनेकांत। क्या कहलाता है सम्यक का निकांत। अनेकांत हो और सम्यक हो, अनेकांत रूप हो और सम्यक हो, एकांत रूप हो और मिथ्या हो, अनेकांत तो हो लेकिन एकांत रूप हो, ऐसा जैसा एक उदाहरण हम देते हैं मिथ्या अनेकांत के लिए। ये तो जैन शास्त्रों में सर्वत्र लिखा है कि जीव को मोक्ष की प्राप्ति जो होती है वो रत्नत्रय को धारण करने से होती है। रत्नत्रय का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन है। इनको धारण करने से ही होती है ना? क्या इनको धारण के बिना भी कोई मार्ग है? एक ही मार्ग है, रत्नत्रय से ही मोक्ष होता है। ही लगाओ यहाँ, ही भी नहीं, ही। रत्नत्रय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सम्यक एकांत है। ये अनेकांत नहीं, ये सम्यक एकांत है। सम्यक भी है और एकांत भी है। इस एकांत के द्वारा हमारा हित होता है, हो सकता है हम इस एकांत के द्वारा भगवान बन सकते हैं। एकांत मार्ग हानिकारक ही है ऐसा नहीं। जैसा अनेकांत दो प्रकार का है वैसे एकांत भी दो प्रकार का, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। सम्यक एकांत क्या चीज है? रत्नत्रय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहां पर ऐसा कोई गुंजाइश नहीं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेकांत हो सकता था यहाँ पर, इससे भी और इससे भी, ऐसा नहीं। कई लोगों को यह भ्रांति है कि जैन धर्म में जो अनेकांत सिद्धांत है, अनेकांत का अर्थ ये भी है और वो भी है, इतना समझते हैं। ये भी है और वो भी है, ये भी है वो भी है का मतलब धर्म से भी कल्याण होता है और अधर्म करने पर भी कल्याण होता है, ये अनेकांत है। ये कौन सा अनेकांत कहलाया? ये मिथ्या अनेकांत। सच्चे देव शास्त्र गुरु ये हमारे लिए आयतन कहलाते हैं। कहलाते आयतनों के शरण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीव का कल्याण होता है। ये सम्यक एकांत हो गया और इसके विरुद्ध मिथ्या अनेकांत का उदाहरण दिया जा सकता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को भजने से भी कल्याण होता है और मिथ्या देव शास्त्र गुरु को भजने से भी कल्याण होता है। ये कौन सा अनेकांत? ये मिथ्या अनेकांत। इसकी शरण से, मिथ्या अनेकांत की शरण से, इसके ज्ञान से, इसके शरण से, इसके आचरण से, इसके चिंतन से, चाहे करोड़ों अनंतों भाव तक चिंतन करके इसका फॉलो कर लें अपन दोनों का, क्या मोक्ष होगा? क्या कल्याण होगा? नहीं होने वाला है। तो अनेकांत का अर्थ ये नहीं कि उसमें सच्चा भी चल जाएगा और झूठा भी चल जाएगा। ये मिथ्या अनेकांत। अब सम्यक अनेकांत क्या है? सम्यक अनेकांत क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीन है ना। देखो, सम्यक दर्शन से ही मोक्ष होता है। ये क्या हुआ? ये एकांत हो गया, ये एकांत हो गया, ये मिथ्या एकांत है। ही एक से एक को ही लिया है, तीन में से एक को लिया है। सम्यक दर्शन से ही केवल आत्मा का कल्याण होता है। ये कौन सा एकांत हो गया? क्यों हो गया? एक से मतलब ज्ञान भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए, सम्यक चारित्र भी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं, सम्यक दर्शन से ही कल्याण होता है। कल्याण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ कल्याण का तात्पर्य मोक्ष की सिद्धि से है। तो मोक्ष की सिद्धि सम्यक दर्शन से ही है, ऐसा है क्या? नहीं। और क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, चाहिए। तो सम्यक अनेकांत क्या है? तो सम्यक अनेकांत का उदाहरण है कि सम्यक दर्शन से भी मोक्ष प्राप्त होता है। भी लगा दिया, यानी अन्य से भी होता है, पर एकाकी एक से ही नहीं होता। इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, होते समय तीनों रहते हैं। जब मोक्ष मिलता है जीव को, तीनों रहते हैं कि एक ही रहता है? तो इससे भी हुआ, इससे भी हुआ, इससे भी हुआ, तीनों है ना वहां। तो भी लगाने से अनेकांत बनता है, ही लगाने से एकांत बनता है। चारित्र से ही मोक्ष होता है। ये क्या हो गया? ये एकांत हो गया। तो चारित्र से ही मोक्ष होता है, यह विचार करना ज्ञान के द्वारा होता है। हम अपने ज्ञान के द्वारा ही विचारक होते हैं। तो चारित्र से ही मोक्ष होता है, ऐसा हमने जो अपने ज्ञान के द्वारा विचार किया, इस ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहेंगे? मिथ्या या सम्यक? चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारा ज्ञान ने विचार किया और ऐसा ही धारणा बना लिया और एकमात्र चारित्र के पीछे लग गए। सम्यक दर्शन की ओर ख्याल नहीं दिया, ज्ञान की ओर ख्याल नहीं दिया। ये मिथ्या एकांत है, मिथ्या एकांत है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों से होता है। तो तीनों से होता है तो ऐसा कह सकते हैं सम्यक दर्शन से भी मोक्ष होता है, यहाँ भी लगा दिया। सम्यक ज्ञान से भी मोक्ष होता है, सम्यक चारित्र से भी मोक्ष होता है। तो भी लगाएंगे तो सम्यक अनेकांत का जन्म होता है, सम्यक अनेकांत का जन्म होता है। और किसी को एक को ही लेकर के बाकी गौण करके, इनका अभाव करके एक से ही मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं तो मिथ्या एकांत का जन्म होता है। ही और भी का डिफरेंस है, यही तो अनेकांत है। ही और भी अनेकांत को जन्म देता है और ही एकांत को जन्म देता है।
दर्शन को लगाने से वो मिथ्या हम आप कर
सम्यक दर्शन मिथ्या नहीं, केवल सम्यक दर्शन के माध्यम से मोक्ष मान लेना ये मान्यता मिथ्या है। सम्यक तो मिथ्या नहीं, वो तो साधन है, एक ही साधन को मान्यता में बना लेना ये मिथ्या है। यानी विचार मिथ्या होते हैं, विचार सम्यक होते हैं, विचार अनेकांत होते हैं, विचार बुरे भी होते हैं, विचार अच्छे भी होते हैं। तो एकांत विचार अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों बातें हैं। एकांत विचार और अनेकांत विचार अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों बातें हैं, जैसा अभी उदाहरण दिया था। एकांत विचार बहुत अच्छा है, उसको अपनाए बिना, उसको माने बिना मोक्ष होता ही नहीं। जैसे रत्नत्रय से ही मोक्ष होता है, ये सम्यक एकांत है। एकांत यह अच्छा एकांत है, बुरा नहीं। और कोई ये कह दे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से ही मोक्ष होता है, ये मिथ्या एकांत है। या तो यूं कह दे सम्यक दर्शन से ही मोक्ष होता है, ये भी मिथ्या एकांत है। सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ये भी मिथ्या एकांत है। सम्यक चारित्र से ही मोक्ष होता है, ये भी मिथ्या एकांत है। तो सम्यक एकांत क्या है? रत्नत्रय से ही मोक्ष होता है।
मोक्ष होता है।
तो फिर मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान से भी मोक्ष होता है, ये अर्थ निकलता है। वहाँ भी लगाओगे उदाहरण बैठेगा नहीं। क्योंकि रत्नत्रय तो तीन ही है, उसको छोड़कर और कोई मार्ग है क्या? और कोई मोक्ष प्राप्ति का उपाय हो, साधन हो, तो भी लगाओ, कोटि बैठेगा। किंतु कोई है नहीं, है ना? रत्नत्रय के बिना मोक्ष प्राप्ति का कोई साधन नहीं है, इसलिए रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, ये सम्यक एकांत है। और इसमें भी लगाएंगे तो मिथ्या अनेकांत होगा, वो मिथ्या अनेकांत भी, यह मिथ्या अनेकांत का भी द्योतक बन सकता है और सम्यक अनेकांत का भी द्योतक बन सकता है। जैसे सम्यक दर्शन से भी मोक्ष होता है, ये सम्यक अनेकांत हो गया। और मिथ्या अनेकांत बनाओ उदाहरण, रत्नत्रय से भी मोक्ष होता है, ये मिथ्या अनेकांत हुआ। क्योंकि अन्य से भी मानते हैं, ये सिद्ध हो रहा है उससे। तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चरित्र ये अन्य है और ये धर्म अधर्म है, अधर्म से भी मोक्ष होता है, ये कहना हुआ। एक पक्ष में कोई बात कहने पर दूसरा पक्ष अपने आप तैयार होता है, वो ही भी के द्वारा। तो अपन को कैसे चिंतन करना चाहिए? विवेक से चिंतन करना चाहिए। जैन धर्म में बताए गए इस विषय को समझने के बाद सम्यक चिंतन करेंगे तो अनेकांत संबंधित जो विचारधारा है वो परिष्कृत हो जाती है, परिशुद्ध हो जाती है। नहीं तो भ्रांति रहेगी। अनेकांत जैन धर्म अनेकांतात्मक है, वो तो सबको मानता है। तो सबको मानता है क्या मतलब? आयतन और अनायतन दोनों को मानता है, धर्म और अधर्म को दोनों को मानता है, उधर से भी मोक्ष मानता है और इधर से भी मोक्ष मानता है, ऐसा नहीं। एक उदाहरण, विष पीने से मरण होता है, सर्वविदित विषय है, विष पीने से मरण होता है, विष से ही मरण होता है, एकांत हो गए, ये एकांत हो गए, विष से भी मरण होता है, ये क्या हो गया, ये अनेकांत हो गया। सम्यक अनेकांत क्या मिथ्या, क्या कहा, सम्यक अनेकांत, विष से भी मरण होता है, इसका मतलब और भी मरण के साधन है, अग्नि से भी मरण होता है, अग्नि से भी मरण होता है, तो विष से भी मरण होता है, दोनों ही ये सम्यक अनेकांत हो गया। एकांत का उदाहरण दे, सम्यक एकांत का उदाहरण बनाओ, देखेंगे एकांत, अन्य उदाहरण आयु खत्म होना मरण कहलाता है, तो आयु पूर्ण होने पर ही मरण होता है, ये सम्यक एकांत है, सम्यक एकांत, आयु समाप्त होने पर ही मरण होता है, बिल्कुल ठीक है, आयु समाप्त नहीं होता है तो मरण नहीं होता, चाहे एक्सीडेंट से मरण हो चाहे समय पर मरण हो, आयु पूर्ण हुए बिना जीव मरता नहीं है, निमित्त से, निमित्त से होती है, निमित्त के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती, निमित्त आयु कर्म निमित्त है और मरण कार्य है, जीने का निमित्त जो होता है वही कारण बनता है मरण के लिए, अभी तक जी रहे थे अब वह समाप्त हो गया, तो निमित्त के अभाव में जो जीवन हम जी रहे हैं वो जीना संभव नहीं, ये कार्य सिद्धि है। ये ध्यान रखना है, हा? क्या हो रहा है, अपन आज अनेकांत को समझा, कल ये बात नहीं आई थी, आज पूरी हो गई, थोड़ा सा ही बच गया था,
वैदिक धर्म में आने का था उसमें और जैन धर्म में क्या फर्क है, वैदिक धर्म में आने का जैन धर्म
में वहाँ एकांत अनेकांत की चर्चा कहाँ है, नहीं चर्चा ही नहीं है, जैन धर्म की मौलिक विशेषता यानी कि इस धर्म में हो और उस धर्म में न हो, ये चर्चा यहाँ चल रही है, यानी अनेकांत यह सिद्धांत जैन धर्म में ही, जैन धर्म के अंदर ही चर्चा है, जैसे कर्म सिद्धांत अन्य धर्मों में नहीं है, जैन धर्म में है, अनेकांत यहाँ है वहाँ नहीं है, शांतवाद यहाँ है वहाँ नहीं है, अवतारवाद का निषेध यहाँ है वहाँ नहीं है, और अपरिग्रहवाद यहाँ है वहाँ नहीं है, ये सभी यही हैं, अहिंसा यहाँ है वहाँ नहीं है, अहिंसा को यहीं पर माना है वहाँ नहीं माना, वहाँ कैसे नहीं आप पूछ सकते, अहिंसक तो वो भी है, शाकाहारी वो भी है, तो ये बातें नहीं है, अहिंसा का तात्पर्य केवल शाकाहार बनना ही अहिंसा का धर्म नहीं है, हाँ। इससे हो रहा है क्या,
पानी पड़ता है,
कहीं कुछ ऐसा होता कल हुआ था शांतवाद की ओर चलते शांतवाद शांतवाद यानी अपेक्षाकृत कथन करने की शैली को शांतवाद कहते किसी अपेक्षा से कोई बात ऐसी है किसी अपेक्षा से ऐसी है इस प्रकार का कथन शांतवाद कथन कहलाता है। तो कैसे तो इसके सात भेद हैं कथन पद्धति सात प्रकार से होती है। इसको नोट कर लो सात भेद कौन कौन से शांतवाद सप्तभंगी के सात भेद शांत अस्ति पहला भेद शांत नास्ति दूसरा भेद शांत अस्ति शांत नास्ति तीसरा भेद है शांत अस्ति नास्ति शांत अस्ति नास्ति चौथा भेद शांत शांत अवक्तव्य शांत अवक्तव्य पांचवा भेद शांत अस्ति अवक्तव्य शांत अस्ति अवक्तव्य छठा भेद शांत नास्ति अवक्तव्य शांत नास्ति अवक्तव्य सातवां भेद शांत अस्ति नास्ति अवक्तव्य शांत अस्ति नास्ति अवक्तव्य ये हो गए सात भेद। इनका अर्थ भी लिखना जरूरी है नीचे लिखो नंबर देकर के। पहले नंबर का अर्थ है अंदर से कुछ है ये लाइट निकाल के देख सकते लाइट निकाल के देख लाइट के वजह से ही हो रहा है। देख सकते इससे मोटे हो जाएंगे अक्षर। शांत अस्ति इसका अर्थ क्या पदार्थ किसी अपेक्षा से है पदार्थ किसी अपेक्षा से है दूसरे का अर्थ पदार्थ किसी अपेक्षा से नहीं है, पदार्थ किसी अपेक्षा से नहीं है। तीसरे का अर्थ पदार्थ किसी अपेक्षा से है और नहीं भी है, है और नहीं भी है। चौथे का अर्थ पदार्थ अवक्तव्य रूप है, पदार्थ अवक्तव्य रूप है, अर्थात वह कहने में नहीं आता। चौथा हो गया पांचवे का अर्थ पदार्थ पदार्थ जो अस्थि गुणों से युक्त है, अस्थि गुणों से युक्त है, वह पदार्थ जो अस्थि गुणों से युक्त है वह एक समय में कहने में नहीं आता, एक समय में कहने में नहीं आता। शायद कितने नंबर का है ये? पांचवा। हाँ, अवक्तव्य अस्थि अवक्तव्य कहने में नहीं आता पदार्थ। दूसरा कितना? छठवां। पदार्थ जो नास्ति गुणों से युक्त है, पदार्थ जो नास्ति गुणों से युक्त है, वह एक समय में कहने में नहीं आता, वह कहने में नहीं आता। सातवां अध्याय पदार्थ जो पदार्थ जो अस्थि गुणों से एवं नास्ति गुणों से युक्त है, अस्थि गुणों से व नास्ति गुणों से युक्त है, वह एक साथ कहने में नहीं आता। ये सातों भेद समझने योग्य हैं। कल उदाहरण दिया था किसका, राम का। राम अपने पुत्रों की अपेक्षा पिता है, ये अस्थि कथन हुआ। पहले नंबर का देख लो, अस्थि कथन हुआ। राम अपने पुत्रों से, पुत्रों की अपेक्षा पिता है, पिता है। तो ये है नहीं है ऐसा सिद्ध नहीं कर रहा है, नहीं है वो तो नीचे दूसरे नंबर में है, नास्ति शाद नास्ति, उसको बाद में समझेंगे। पहले है, है तो क्या केवल पुत्र ही है क्या, पिता ही है क्या, नहीं है। और क्या क्या है वो, पति है, पुत्र भी है, दामाद भी है, भाई भी है,
बेटा भी
है।
बेटा
कौन,
बेटा,
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 पुत्र भी,
बेटा हो गए ना, पुत्र बेटा एक ही बात है। है 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 ये कितने, राम मनुष्य भी है, मनुष्य है कि नहीं
है।
तो ऐसे है 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 वाले गुण कितने हो गए, पति ये भी गुण है, पुत्र ये भी गुण है, पिता ये भी गुण है, पुत्रत्व पितृत्व भ्रातृत्व पतित्व, ये सब गुण राम के भीतर है के रूप में है, है के रूप में है। तो ये सभी गुण हो गए ना, तो इन सभी गुणों को राम धारण करने वाले हैं जो अस्थि गुण हैं, अस्थि रूप गुण है ये। अस्थि यानी हड्डी नहीं, अस्थि रूप गुण है ने विद्यमान सद्रूप गुण है, जिनका अस्तित्व होता है उनको सत कहते हैं, होना है, होने रूप गुण है ये, विद्यमान गुण है ये, है कि नहीं, ठीक। अब अस्थि रूप जो गुण होते हैं वो वास्तव में होते ही हैं, परंतु जो नास्ति रूप गुण होते हैं वो होकर के भी नहीं होने के बराबर है, नहीं। राम पिता नहीं है किसकी अपेक्षा से, पर की अपेक्षा से। तो पर चतुष्टय की अपेक्षा से हमने कल समझाया था, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव की अपेक्षा से राम नास पितृत्व को धारण करने वाले नहीं है, यानी अपितृत्व गुण भी है, अपितृत्व यानी पिता नहीं है, अपितृत्व निषेधवाचक, पितृत्व का विरुद्ध अपितृत्व। राम पिता नहीं है, है भी और नहीं भी है, ये दोनों एक साथ गुण राम में पाए जाते हैं। निषेधवाचक भी है और क्या बोलते हैं, विद्यमान वाचक भी है, होने रूप भी है और नहीं होने रूप गुण भी है। ये एक दूसरे से विरुद्ध गुण है, नास्तिक नास्ति गुण और अस्ति गुण। स्वपुत्र की अपेक्षा से वो पिता है तो पिता है, ये अस्ति गुण हो गया। नास्ति गुण कौन सा? अपितृत्व। अपितृत्व नास्ति गुण है। तो नास्ति गुणों को किस चतुष्टय से घटित करना चाहिए? पर चतुष्टय से। और अस्थि रूप गुणों को किस चतुष्टय से? स्व चतुष्टय से समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो अस्थि गुण कितने हैं किसी भी पदार्थ में? एक राम का उदाहरण मात्र दिया जा रहा है। दुनिया में जितने पदार्थ हैं वे अस्थि गुणों से भी युक्त हैं और नास्ति गुणों से भी युक्त हैं, दोनों गुणों से युक्त है। तो इन गुणों का अभाव नहीं होता कभी, पदार्थ में गुणों का अभाव कभी नहीं होता। पदार्थ है तो पदार्थ भी है, उनके गुण भी हैं और उनकी पर्यायें भी हैं, उनकी पर्यायें भी हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय रूप है, कोई भी वस्तु अपने अपने द्रव्य गुण और पर्यायों से युक्त ही होता है। पदार्थ चेतन पदार्थ जीव है, अचेतन पदार्थ अजीव है। कोई भी पदार्थ दुनिया में किसी को भी ले लो, वो पदार्थ ही है। पदार्थ है तो फिर उसमें अस्थि रूप गुण भी रहेंगे और नास्ति रूप गुण भी रहेंगे। और इन गुणों को शाद्वाद की पद्धति से शैली से कैसे घटा करके समझाया जाता है वो बात यहाँ चल रही है। तो पहला भेद कौन सा है? शाद अस्थि। तो इसके लिए उदाहरण क्या दिया है? राम पिता हैं। और इससे नेगेटिव, राम पिता नहीं है। नहीं है कहने के लिए कौन सा उदाहरण, कौन सा चतुष्टय? पर चतुष्टय से राम पिता नहीं है, तो सेकंड नंबर में आ गया। सेकंड भेद शाद नास्ति, राम पिता नहीं है। पर पुत्रों की अपेक्षा से राम पिता नहीं है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से राम पिता नहीं है, ये दूसरा भेद हो गया। पहला भेद क्या कहलाया? राम अपने पुत्रों की अपेक्षा से पिता हैं। ये प्रथम नंबर का अस्थि रूप गुणों का प्रतिपादन करने का उदाहरण हो गया। तो है पिता है और पिता नहीं है, इन दोनों का उदाहरण घटित हो गया। अब तीसरा भेद एक एक को ध्यान में रखते हुए जाना है, उसको समझना है। हाँ चलो, तीसरा भेद कौन सा? शाद अस्ति नास्ति। शाद अस्ति नास्ति एक साथ, तो राम पिता हैं भी और नहीं भी, एक साथ हैं क्या? नहीं हैं भी, पिता नहीं भी। तो नहीं भी किस अपेक्षा से बताया था? पर चतुष्टय क्या है भी, ये स्व चतुष्टय की अपेक्षा से। तो राम एक काल में है भी और नहीं भी, ये दोनों एक साथ है कि नहीं? तो ये तीसरा भेद है, नहीं है। तो ये तीसरा भेद हो, एक काल में राम है भी और नहीं भी है, एक ही काल में वो है भी और नहीं भी है, दोनों सिद्ध हैं। पहला क्या कहा? राम पिता हैं, ये अशिक अस्थि कथन हुआ। पिता नहीं हैं, ये नास्तिक कथन हुआ। और पिता हैं भी और नहीं भी, एक काल में वो वस्तु राम नामक वस्तु एक साथ दोनों गुणों को धारण कर रहा है, हैं भी और नहीं भी, ये अस्थि नास्ति हो गया। अब कौन सा हो गया चौथा, अब चौथा कर चौथा भेद क्या शाद अवक्तव्य, शाद अवक्तव्य ये क्या कहा अवक्तव्य ने कहने योग्य नहीं है, शाद अवक्तव्य शाद ने कथनचित राम कहने योग्य नहीं है अर्थात कहने में नहीं आते। कहने में नहीं आते, देखो राम कहने में आ गए अस्ति कथन से नास्तिक कथन से कहने में आ गए और अस्ति नास्तिक कथन से भी कहने में आ गए, यानी दोनों एक साथ हैं, एक साथ हैं ऐसा कहने में आ गए कि नहीं आ गए, है कहने से भी आ गए नहीं है कहने से भी आ गए और है नहीं एक साथ तो दोनों एक साथ हैं वैसा भी कहने में आ गए। अब चौथा भेद है शाद अवक्तव्य, राम अवक्तव्य रूप हैं अर्थात राम कहने में नहीं आते, यानी कहने में आते हैं ये भी है और कहने में नहीं आते ये चौथा भेद। तो कहने में आए ये तीन भेदों में और कहने में अब नहीं आ रहे हैं ये चौथे भेद में। तो कहने में नहीं आ रहे ये कैसा, तो उसी को नीचे बताते नीचे वाला भेद कहने में नहीं आते कैसे नहीं आते देखो शाद अस्थि अवक्तव्य वस्तु अस्थि रूप है और अस्थि गुण कितने हैं, अस्थि गुण कितने हैं एक ही है क्या पदार्थ में अनंत हैं, नास्ति कितने हैं वो भी अनंत हैं, तो एक एक अस्थि के आगे एक एक नास्ति भी जुड़ा हुआ है। पिता ये गुण हो गया पिता हैं और पिता नहीं है ये निगेटिव गुण भी हो गया उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पुत्र पुत्र भी हैं और पुत्र नहीं भी हैं, दामाद हैं भी और दामाद नहीं भी, पति हैं भी पति नहीं भी, इस प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव प्रत्येक अस्थि गुण के पीछे एक नास्तिक गुण भी है क्या नहीं, तो ये भी अनंत हैं और वो भी अनंत हैं, नास्तिक गुण भी अनंत हैं अस्थि गुण भी अनंत हैं, जितने अस्थि गुण होते हैं उतने ही नास्तिक गुण होते हैं, ये स्वीकार करना ही पड़ता है करना ही पड़ेगा क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। तो ये पांचवा भेद आया, पांचवा भेद क्या है ये चौथे भेद में क्या कहा था अवक्तव्य, यानी राम कहने में नहीं आते ये कह दिया, बिल्कुल ठीक है स्वीकार करना ही पड़ेगा, राम कहने में आ भी गए तीन भेदों में, पहला भेद दूसरा भेद तीसरे भेद में तो है का कथन हुआ नहीं का कथन हुआ, तो ये कहने में आ रहा है। अब पांचवे भेद चौथे भेद में कहने में नहीं आते इतना कह रहे हैं, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यानी पदार्थ वक्तव्य भी है कथनचित वक्तव्य रूप भी है और अवक्तव्य रूप भी है, यानी कहने में भी आता है और कहने में नहीं भी आता है, ये हो गया। और कहने में नहीं भी आता है ये कैसे प्रश्न उठता है, यह अभी तक तो कहने में आया तीन भेदों में तो कहा राम है राम नहीं है, राम है भी नहीं भी है ये दोनों एक साथ एक ही द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, ये तो कहने में आ रहा है तो कह दिया, कहने में आ रहा है इसलिए कह दिया जो वक्तव्य रूप है, ये जो कहने में आया वो वक्तव्य रूप हो गया। अब अवक्तव्य रूप भी है, हाँ जो ऊपर के गुण हो गए ना राम पति है पति नहीं है पति है भी और पति नहीं भी, ये जो गुणों का कथन हो गया ना ये भाई भी और नहीं भी, ये दोनों अवक्तव्य रूप भी हैं, यानी कहने में नहीं भी आते हैं। ये कैसे? तो पांचवा भेद वही बताता है। कैसे बोलो उसको? पांचवा भेद का नाम क्या है? शाद, शाद अस्थि अवक्तव्य। कौन सा भेद बोल रहे हैं? पांचवा, शाद अस्थि अवक्तव्य। शाद यानी कथनचित किसी अपेक्षा से, अस्थि यानी है रूप जो गुण है वे गुण अवक्तव्य रूप भी हैं। जो जो गुण अस्थि वाले हैं वो भी अवक्तव्य रूप हैं। थोड़ा एकाग्र करके सुन लेना, समझाते समय सुनो, लिखो नहीं तो समझने के बाद अच्छी तरह से लिख सकते हैं। क्या बोला? पांचवे भेद में शाद अस्थि अवक्तव्य। अस्थि गुण कितने हैं? अनंत है। तो अनंत कहने में आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, किंतु एक समय में एक ही गुण कहने में आता है, दो गुण एक साथ कहने में नहीं आते। समझ में आया ना? क्या बोला? अस्थि रूप गुण कितने हैं? अनंत हैं। वे कहने में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। और नहीं आ सकते हैं ऐसा भी है क्या? नहीं ऐसा भी है। तो कहने में आ सकते हैं ये तो कह दिया, शाद अस्थि शाद नस्थि, वो अस्थि रूप गुण अनंत हैं, उनको हम कह सकते हैं, कहने में भी आ सकते हैं, किंतु कैसे? क्रम से ही कह सकते हैं। एक काल में दो गुणों का व्याख्यान एक साथ हो सकता है क्या? तो वस्तु में ये भी गुणधर्म है, ये भी विशेषता पाई जाती है कि वस्तु एक साथ अस्थि रूप जो गुणों से युक्त है उन गुणों को हम एक साथ कह नहीं सकते, एक समय में कह नहीं सकते, क्रम से ही कह सकते हैं। तो ये पांचवा भेद ये बताता है कि शाद अस्थि अवक्तव्य, जो अस्थि रूप गुण हैं वो अवक्तव्य हैं, एक समय में सभी कहने में नहीं आते, इसलिए वे अस्थि रूप सभी अवक्तव्य रूप हैं। अब छठा भेद, शाद नास्ति अवक्तव्य। शाद नास्ति अवक्तव्य, नास्ति रूप गुण भी है क्या? नहीं। उसमें वो कितने हैं? अनंत हैं। और नास्ति रूप गुण भी अवक्तव्य रूप हैं, क्योंकि नास्ति रूप अनंत हैं, तो क्रमशः कहेंगे तो कहने में आते हैं, और बहुत सारे हैं तो एक साथ वे कहने में नहीं आते। तो कहने में नहीं आते, अवक्तव्य रूप हैं, इसलिए इसको छठा वेद बनाया। उदाहरण तो दे रहे हैं ना,
ज्ञान गुण जीव में ज्ञान गुण है और श्रद्धा गुण है।
हाँ, एक साथ उदाहरण ले लेंगे अपन। अभी सातों भेदों का स्वरूप समझो। हाँ, पहले आप सातवा, एक रह गया शाद अस्थि नास्ति अवक्तव्य। देखो, वस्तु में अस्थि रूप भी गुण अनंत हैं, नास्ति रूप भी गुण अनंत हैं, और ये दोनों गुण एक समय में एक द्रव्य में होते ही हैं क्या? नहीं होते? होते हैं। अस्थि रूप भी गुण होते हैं और नास्ति रूप भी गुण होते हैं, एक समय में है क्या? नहीं है। और वे अस्थि रूप भी गुण नास्ति रूप भी गुण एक साथ हैं, और उन दोनों को एक साथ कहना संभव है क्या? नहीं है। पहला अस्थि कथन करके ही नास्ति कथन करना पड़ेगा, या तो नास्ति कथन करके ही अस्थि कथन करना पड़ेगा, ऐसा क्रमशः ही कथन हो सकता है। अस्थि का भी और नास्ति का भी एक साथ कथन कैसे हो सकेगा? इसलिए अस्थि नास्ति अवक्तव्य, अस्थि नास्ति दोनों ही अवक्तव्य रूप हैं, यानी कहने योग्य, एक साथ कहने योग्य वो दोनों नहीं हैं, क्रम से कहने योग्य हैं, अक्रम से हम कह नहीं सकते। ये हो गया इनका भाव, इन सातों का जो भाव था हमने बता दिया। अब उदाहरण के माध्यम से चलते हैं। चलो राम का ही उदाहरण लेते हैं। राम स्वचतुष्टय की अपेक्षा से पिता हैं, ये अस्थि पक्ष हो गया। अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा से पिता हैं, ये हय रूप गुण सिद्ध हो रहा है, अस्थि रूप गुण सिद्ध हो रहे हैं। और राम पिता नहीं है, किस चतुष्टय से? पर चतुष्टय से नहीं है, ये भी राम का ही गुण है, ये नास्ति रूप गुण है। नहीं है ये भी गुण है और नास्ति रूप गुण है, ये समझ में आ रहा है ना? उदाहरण के साथ जा रहे हैं, हाँ उलझन में नहीं पड़ना, सरलता से समझते हुए जाना। नास्ती रूप कथन हो गया, ठीक है, उसका भी समझ में आ गया, इसका भी समझ, उदाहरण समझ में आ गया। तीसरा उदाहरण, तीसरा अस्ति नास्ति, राम पिता है भी और नहीं भी है, ये दोनों एक साथ है क्या? नहीं, तो तीसरा वेद एक साथ दिया है, अस्ति नास्ति, शायद अस्ति नास्ति दोनों को ही दिया है। तो राम एक काल में अस्थि गुणों को भी धारण करने वाले हैं और नास्ति गुणों को भी धारण करने वाले हैं, इतना बता दिया। पहले भेद में स्वचतुष्टय से कथन होता है, दूसरे भेद में पर चतुष्टय से कथन होता है, और स्वचतुष्टय पर चतुष्टय दोनों कथन एक साथ एक पदार्थ में रहते हैं, एक साथ एक पदार्थ में दोनों ही रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? क्या दूर रहता है? नास्ति दूर रहता है और अस्ति पहला रहता है, ऐसा नास्ति बाद में आता है क्या? नहीं, दोनों एक साथ रहते हैं। पर चतुष्टय से राम नहीं भी है और स्वचतुष्टय से राम है भी, ये दोनों राम के ही लक्षण है। तो तीसरा भेद है भी और नहीं भी, ये तीसरा भंग बन गया, ये राम का ही है। राम पिता हैं भी और राम पिता नहीं भी हैं, ये तीसरा भेद है। चलो चौथा भेद, शार अवक्तव्य। अब राम जो है अभी तक तो कहने में आए, है कहने में आए, नहीं है वो भी कहने में आए, है नहीं ये भी कहने में आए, लेकिन अवक्तव्य रूप भी हैं, यानी राम कहने योग्य हैं, ये अकेला ही एकांत नहीं है, राम कहने योग्य ही हैं ऐसा एकांत नहीं है, अवक्तव्य रूप भी मानना पड़ेगा, ये कहते हैं। तीन भेदों में कहने में आए हैं, नहीं है, है नहीं, ये दोनों गुण एक साथ उनमें है, ये तो वस्तु स्वरूप है, दोनों गुण का एक साथ होना ये वस्तु स्वरूप है। तो इस प्रकार से है नहीं है और दोनों रूप भी हैं, ये कहने में तो आ रहा है, ये वक्तव्य रूप है, इसी को वक्तव्य रूप कहते हैं। किंतु राम केवल वक्तव्य रूप भी रूप ही नहीं होते, अवक्तव्य रूप भी होते हैं, अर्थात न कहने योग्य भी होते हैं। ये चौथा भेद है,
समय भेद लगा,
समय भेद,
समय भेद लगा,
हाँ समय भेद तो है, कहने में तो कहने के लिए समय तो क्रम से ही कहना पड़ता है, समय भेद तो आएगा ही,
समय भेद की अपेक्षा से ही ऐसे।
हाँ राम अब अवक्तव्य रूप भी हैं, यानी दोनों लक्षण हो गए, दोनों गुण है उनमें, वो कहने योग्य भी हैं और कहने योग्य नहीं भी हैं, ये भी दोनों गुण है उनमें, वस्तु में दोनों गुण पाए जाते हैं, कहने योग्य भी वो वस्तु है और नहीं कहने योग्य भी वह वस्तु है, ऐसा चौथा वेद बता रहा है। पांचवा वेद शायद अस्ति अवक्तव्य, अस्ति कथन स्वचतुष्टय की अपेक्षा से, तो फिर उदाहरण क्या था अपना? पिता, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से पिता है, अपने पुत्रों की अपेक्षा से ही पिता हैं, तो शाद अस्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, एक गुण कहने में आया, ठीक है पिता हैं ये तो कहने में आया, लेकिन क्या राम केवल पिता ही हैं? स्वचतुष्टय रूप गुण उनमें कितने हैं? अनंत हैं। तो पति भी है, पुत्र भी है, दामाद भी है, पिता भी है, ये बहुत सारे हई रूप जो गुण हैं वो बहुत सारे हैं। तो हई रूप जो गुण हैं वो छठा नंबर का बता रहा है, पांचवा का बता रहा है क्या? शात अस्थि प्रवक्तव्य, जो अस्थि रूप गुण हैं वो अनंत हैं, पिता पति ये अनंत हो जाते हैं। इसे ये भी कहने में आते ही हैं, ऐसा है क्या? नहीं, क्रम से कहेंगे तो कहने में आते हैं। एक साथ दो गुण एक काल में कहने में नहीं आते, ये पांचवा भंग हो गया, ये पांचवा भंग हो गया। छठा भंग, शाद नास्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य। नास्ति गुण कितने थे? अनंत थे। उन अनंत गुणों को एक साथ कहना संभव है क्या? नास्ति 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 जितने भी थे वो एक साथ कहने में आ सकते हैं क्या? नहीं, उनको भी क्या करना पड़ेगा? क्रम से ही कहना पड़ेगा। तो क्रम से तो कह सकते हैं, इसलिए अस्थि रूप है। क्रम से अगर नहीं कहेंगे और दो सबको एक साथ कहना चाहते हैं तो ये असंभव है, इसलिए अवक्तव्य रूप है, अवक्तव्य रूप है। तो शाद नास्ति अवक्तव्य, यह छठा भेद हो गया। राम पिता नहीं है, ये नहीं है, ऐसा पिता एक गुण है, ऐसे अनेक गुण है। राम दामाद नहीं है, राम पिता नहीं है, राम पति नहीं है, सब सिद्ध हो सकते हैं कि नहीं? नहीं है। तो नास्ति कथन के जितने गुण हैं ना, वो गुण भी क्रम से ही कहने में आते हैं, एक साथ सभी कहने में नहीं आते, इसलिए नहीं आते, इसलिए छठा भेद तैयार हो गया है, छठा भेद तैयार हो गया है। क्या कहते हैं उसको? शाद नास्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य। ये भेद आपको ख्याल में रहना चाहिए तो समझ में आने वाला है। भेद सामने नहीं है तो फिर जो समझा रहे ना, ये भी समझ में आने वाला नहीं है। भेद ख्याल में आना चाहिए। छठे नंबर में क्या कहा? शाद नास्ति अवक्तव्य। तो ये कैसे? नास्ति अनंत गुण होते हैं और वो एक काल में कहने में नहीं आ सकते, इसलिए अवक्तव्य कह दिया नास्ती को। ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए। ये हो गया छठा। अब चलिए सातवा। शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। राम पिता हैं और पिता नहीं हैं। अस्थिवाचक विद्यमान गुणों के भी निदान हैं और नहीं है ऐसे गुणों के भी वे निदान हैं। राम दोनों गुणों से युक्त हैं, दोनों गुण एक साथ राम में पाए जाते हैं, अस्थि भी और नास्ति भी। किंतु कहने में आएंगे क्या एक साथ एक काल में? नहीं आते। तो उसको सातवा भेद का नाम क्या रखा? शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। कहने में नहीं आते हैं इसलिए शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य कहा। अस्ति को भी और नास्ति को भी अवक्तव्य कहा। क्यों कहा? एक साथ कहने में ये दोनों नहीं आते, क्रमशः कहने में आ सकते हैं एक एक करके। एक और जो अस्ति 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 बहुत सारे गुण है, अनंत हैं, वो भी कहने में नहीं आते एक साथ, वो भी एक एक करके ही कहने में आते हैं। कहने में आते हैं इसलिए वस्तु वक्तव्य रूप है, वस्तु वक्तव्य रूप है। कहने में नहीं आते हैं, इसलिए वस्तु अवक्तव्य रूप है, ऐसा विचार करना चाहिए। समझ में आ गया? राम के उदाहरण के माध्यम से ये काम पूरा हो गया, राम का काम पूरा हो गया। ये शाद्वाद कथन है। शाद्वाद के यद्यपि यहाँ भेद नहीं दिया है, संक्षिप्त अर्थ बताया है। क्या बताया इनने? शाद का अर्थ है विवक्षा और वाद का अर्थ है कथन, अर्थात किसी अभिप्राय से अथवा दृष्टि विशेष से एक धर्म का कथन करने वाली शैली शाद्वाद है। कथन करने की शैली इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, और अपेक्षा को ही निरपेक्ष बना देंगे तो एकांत हो जाएगा, एकांत हो जाएगा। जैसे राम स्वचतुष्टय की अपेक्षा से पिता है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से पिता नहीं है, ये दोनों बातें हैं। ऐसा ग्रहण कर लिया जाए राम पिता ही हैं, खत्म बात, और कुछ विचारो मत आगे, तो एकांतवाद आ जाएगा। जैन धर्म अनेकांत है कि एकांत है? अनेकांत है। हाँ, अनेकांत इन अर्थों में है। अनेकांत का अर्थ ये नहीं कि जो विचार कर लो सब स्वीकार है। हाँ, गलत रास्ता भी अनेकांत है और सच्चा रास्ता भी अनेकांत है, यानी गलत को भी मानना और सही को भी मानना ये अनेकांत है। ऐसा नहीं, जैन धर्म ऐसा हो जाए तो मिथ्या हो जाएगा, मिथ्या अनेकांत वाला ठहर जाएगा। गलत भी मान्य है और सही भी मान्य है, दोनों मान्य करो तो ये अनेकांत। तो ऐसा यदि मान्य करेंगे तो क्या मोक्ष हो जाएगा? मिथ्या अनेकांत से मोक्ष हो जाएगा? तो सम्यक अनेकांत चाहिए। सम्यक अनेकांत क्या है? जिससे कार्य सिद्धि होती है उन सभी को, उन सभी कारणों को मानना, ये सम्यक अनेकांत है। सबको मानना जिससे कार्य सिद्धि होती है, और जिससे कार्य सिद्धि होती ही नहीं उनको नहीं मानना, ये एकांत है, सम्यक एकांत है। उनको नहीं मानना, बिल्कुल ही नहीं मानना, और सही कारणों को ही मानना, ये सम्यक एकांत है। ये है, कैसा है गणित जैन धर्म का? अब समझ में आया? अनेकांत का अर्थ, बहुत से लोग ये कहते हैं जैन धर्म तो अनेकांत है, वो भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, इसी का नाम अनेकांत, इसलिए हम दोनों को मानते हैं। ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता तो प्रकृति में ऐसा भी होता, जैन धर्म अनेकांत है, दूध पीने से जीवन मिलता है, जीते हैं, स्वस्थ रहते हैं और शक्ति भी आती है, तो इसमें एकांत नहीं पकड़ना, इसमें भी अनेकांत पकड़ लेना। दूध से विरुद्ध वस्तु कौन सी है? जहर है, विषय। तो अनेकांत तो है जैन धर्म, केवल दूध पीने से ही जीवन मिलता है ऐसा नहीं है। जैन धर्म अनेकांत है, विष पीने पर भी जीवन मिलता है, ऐसी मान्यता कर लोगे? विष तो विष है, वो तो मारक है। जैन धर्म भी कहता है कि विष को त्यागो और दूध को ही पियो, और दूध को ही पीना ये सम्यक एकांत है। विष नहीं पीना, दूध को ही पीना, इसका मतलब क्या? विष को नहीं पीना, ये सम्यक एकांत है। विष को त्यागना ही ये सम्यक एकांत है, त्यागना ही चाहिए ये सम्यक एकांत है। और मिथ्या अनेकांत बना ले, दूध से भी जीवन मिलता है, विष से भी जीवन मिलता है, ये मिथ्या अनेकांत, ये मिथ्या अनेकांत। अब जिन जिन वस्तुओं से जीवन मिलता है उसमें सम्यक अनेकांत का उदाहरण देखें। जिन जिन वस्तुओं से जीवन मिलता है, पानी से जीवन मिलता है कि नहीं मिलता है, दूध से मिलता है, रोटी से मिलता है, दाल से, ये तो मालूम ही है, ऐसे ही पूछ रहा हूं। जिन वस्तुओं से जीवन मिलता है उन वस्तुओं को लेकर के हम एकांत भी कर सकते हैं और अनेकांत भी कर सकते हैं। जैसे एकांत क्या है, दूध से ही जीवन मिलता है, ये एकांत हो गया। इसका मतलब रोटी से नहीं मिलता है क्या, पानी से नहीं मिलता है क्या, उससे भी मिलता है, तो ही क्यों लगाया, यहां ही लगाना ये एकांत मिथ्यात्व है। एकांत, अच्छा यदि ऐसा लगाते तो दूध से भी जीवन मिलता है, तो ये सम्यक अनेकांत हो गया। दूध से भी जीवन मिलता है, तो दूध पीने से भी मिलता है ये कहना चाहते हैं, और रोटी खाने से भी मिलता है, पानी पीने से भी मिलता है, जितने मतलब जीवन जीने के लिए साधन सामग्री है उन सब से जीवन मिलता है, इसलिए ये अनेकांत हो गया। अनेकांत हमें हित पहुंचाता है कि अहित, हित ही पहुंचाता है। सम्यक अनेकांत हो तो हमारा हित करता है, और मिथ्या अनेकांत हो तो हमारा अहित करता है। तो हमारे लिए त्याग करने योग्य कौन कौन से, मिथ्या अनेकांत त्यागने योग्य है और मिथ्या एकांत त्यागने योग्य है, सम्यक एकांत ग्रहण करने योग्य है और सम्यक अनेकांत ग्रहण करने योग्य है। ये है जैन धर्म। जैन धर्म का अनेकांत क्या है अच्छी तरह से समझ में आ गया, और कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शांतवाद हाँ क्या राम
राम राम
अवक्तव्य अस्ति नास्ति गुणों के आधार से अवक्तव्य हो गए, और एक समय में न तो अस्ति गुण कहने में आते हैं एक काल में, और न ही नास्ति गुण एक काल में कहने में आते हैं, कहने में नहीं आते, इसलिए राम अवक्तव्य रूप है। अब देखो ना, राम अस्थि गुणों से युक्त हैं, कितने अस्थि गुण हैं, अनंत हैं, अनंत हैं कि नहीं, पति भी है, पुत्र भी है, पिता भी है, तो एक साथ कहने में आएंगे क्या ये सारे गुण। जिस समय हम राम को पिता कहेंगे, पिता कहते समय ही पुत्र भी कह सकते हैं क्या कथन में, तो एक 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 करके पहले पिता कहेंगे फिर बाद में पुत्र कहेंगे, एक 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 करके ही कहने में आता है कि नहीं, क्या एक साथ आ सकता है, नहीं आता, इसलिए अवक्तव्य रूप है, अस्थि की अपेक्षा से भी अवक्तव्य रूप है।
एक समय में एक ही बात,
हाँ एक साथ एक समय में कहने में नहीं आते ये अस्थि गुण, इसलिए अस्थि अवक्तव्य पांचवा भेद है, पांचवा भेद अस्थि अवक्तव्य। कथनचित कथनचित यानी किसी अभिप्राय से ऐसा और किसी अभिप्राय से ऐसा, कथनचित का अर्थ किसी अभिप्राय से किसी अपेक्षा से ऐसा अर्थ। हाँ शांत का अर्थ कथनचित, शांत का अर्थ जो है वो कथनचित, कथनचित यानी अपेक्षा, अपेक्षा यानी अभिप्राय, किसी अभिप्राय से राम पिता हैं, किसी अभिप्राय से राम पिता नहीं है, किसी अपेक्षा से है भी और किसी अपेक्षा से नहीं भी। शाद यानी कथनचित, कथनचित यानी अभिप्राय या अपेक्षा, ऐसा अर्थ है। कदाचित यानी कभी, कदाचित संस्कृत शब्द है और कथनचित भी संस्कृत शब्द है। कथनचित यानी किसी अपेक्षा से, कथम किस प्रकार, कथम शब्द जो है किस प्रकार कैसे, ये अर्थ निकलता है। संस्कृत वर्ड है, भाषा संस्कृत है। कथम यानी कैसे, किस प्रकार। रामा कथम गच्छति, राम कैसे जाता है। कथम गच्छति रामा, रामा है पादेन गच्छति, राम पैदल जाता है, गाड़ी में नहीं जाता क्योंकि हिंसा होती है। राम कथम गच्छति, राम कैसे जाता है, किस प्रकार जाता है, तो पैदल जाता है। कथम यानी किस प्रकार, कैसे। कथन चित, वहां पर चित शब्द जोड़ दिया है। कथम किस प्रकार से जाता है, किस अपेक्षा से। चित यानी वहां अपेक्षा, कथम यानी किस प्रकार, किस कौन से उपाय से, किस किसकी अपेक्षा से, किस अभिप्राय से जाता है, ऐसा अर्थ कथन चित्त का अर्थ। चित्त शब्द जोड़ता है, चित्त ची और तत् हलंत है। कथन चित्त डबल नहीं है, चित्त ना करो, चित्त ने मन हो गया फिर चित्त नहीं लिखना। कथन ची और त के नीचे पाए तोड़ाए थे चित्त कहेंगे तो चित्त मन का नाम है, त डबल भी नहीं करना और केवल त लिख करके पाए तोड़ना। कथन चित्त, कथन चित्त। और कदा चित्त एक शब्द है, कदा यानी कब, कदा अर्थात कब, कदा किस समय में, कस्मिन काले, कदा कस्मिन काले समय को बताया जा रहा है, किस समय में। कदा, कदा यानी किस समय में। भवान कदा गच्छति, आप कब जाते हैं। भवान आप कदा गच्छति, कब जाते हैं, किस समय। कदा दा, दा प्रत्यय जो लगता है वो काल के अर्थ में, किस समय जाएंगे, कब जाएंगे, कब किस समय। तो कदा का अर्थ होता है किस समय, और चित्त लगता है कदा चित्त यानी किसी समय में, किसी भी समय में, कदा चित्त किसी भी काल में, वहां पर भी लग गया, किसी भी काल में। कदाचित यानी कदाचित ऐसा भी हो सकता है, यानी किसी काल में ऐसा भी घटित हो सकता है और किसी काल में ऐसा भी घटित हो सकता है, ऐसा बतलाने के लिए कदाचित शब्द का उपयोग करते हैं। कदाचित एवं अपि संभवति, कदाचित तादृशी अपि संभवति, कदाचित ऐसा भी हो सकता है, कदाचित वैसा भी हो सकता है, किसी काल में ऐसा भी और किसी काल में वैसा भी, किसी काल में यानी कदाचित ऐसा। और कोई प्रश्न अनेकांत संबंधी, शाद्वाद संबंधी। नास्ति, क्रमशः कहने में आता है, इसलिए वस्तु वक्तव्य रूप है। और एक काल में सारे गुण कहने में कैसे आ सकते हैं, नहीं आते, इसलिए अवक्तव्य रूप भी है। नास्ति भी अनंत गुण है और अस्ति भी अनंत गुण है, उनको क्रमशः कहेंगे तो कह सकते हैं, इसलिए वक्तव्य रूप है। और एक काल में एट ए टाइम अनंत गुणों को कहना संभव ही नहीं है, इसलिए पदार्थ अवक्तव्य रूप भी है। और
सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत अच्छा कौन है?
दोनों अच्छे हैं, दोनों सम्यक हैं तो दोनों अच्छे हैं, दोनों स्वीकार के योग्य हैं, दोनों स्वीकार के योग्य। और दोनों को स्वीकार करने पर ही हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, उसमें से एक स्वीकार करते हैं तो भी नहीं, एकांत हो जाता है। अनेकांत और एकांत जो दोनों सम्यक हैं, उन दोनों को स्वीकार करने से ही कल्याण होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन होता है। प्रमाण ज्ञान वही है जिसमें सम्यक एकांत भी है और सम्यक अनेकांत भी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सम्यक एकांत ही केवल स्वीकार किया और सम्यक अनेकांत को स्वीकार नहीं किया, तो वहां पर भी अटक जाएगा साधक कल्याण करने से। कैसे? देखो, रत्नत्रय से ही मोक्ष होता है, इसको तो स्वीकार कर लिया उनने, परंतु ऐसा स्वीकार नहीं कर रहा है कि सम्यक दर्शन से भी मोक्ष होता है, भी लगा करके स्वीकार नहीं कर रहा है, ही लगा करके स्वीकार कर रहा है। कैसे? रत्नत्रय से ही मोक्ष होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तीनों मिल करके जो रत्नत्रय है ना, उससे ही मोक्ष होता है। तो क्या सम्यक दर्शन से भी मोक्ष होता है ये गलत है? ये भी सही है, तो उस सही को स्वीकार नहीं करोगे? नहीं करोगे तो फिर जब कभी भी आप चिंतन करोगे अटक जाओगे। सम्यक दर्शन से भी मोक्ष होता है, उसमें सम्यक दर्शन भी कारण है, ये अनेकांत है, सम्यक ज्ञान भी कारण है, सम्यक चारित्र भी कारण है, तो एक का कथन हम कर रहे हैं। भी जब लगा देते हैं कि सम्यक दर्शन से भी मोक्ष होता है, तो दो वहां पर रत्न गौण है और एक प्रधान हो गया। अनेकांत में जब अपन कथन करते हैं तो एक प्रधान होता है, दो गौण होते हैं और भी जुड़ जाता है। संस्कृत में भी को अपि कहते हैं, सम्यक दर्शनम अपि मोक्षस्य कारणम, बिल्कुल सम्यक अनेकांत, सम्यक अनेकांत का उदाहरण है ये, सम्यक अनेकांत का उदाहरण, सम्यक दर्शनम अपि मोक्षस्य कारणम। रत्नत्रयम एव मोक्षस्य कारणम, ये सम्यक एकांत हो गया, क्योंकि रत्नत्रय के अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता, ये दर्शाता है, इसलिए ये सम्यक एकांत हो गया। सम्यक दर्शनम अपि मोक्षस्य कारणम, सम्यक ज्ञानम अपि मोक्षस्य कारणम, सम्यक चारित्रम अपि मोक्षस्य कारणम, ये तीनों उदाहरण सम्यक अनेकांत के उदाहरण है, सम्यक अनेकांत के उदाहरण बन गए। और
कैसे करने का
उपयोग, कैसे करने का, किसका?
सप्तभंगी का।
सप्तभंगी का उपयोग कैसे करने का? चिंतन करने के लिए जब हम प्रयत्न करने लगते हैं, जैन धर्म के सिद्धांत को, विषयों को स्वाध्याय करके, अध्ययन करके जब हम चिंतक बनते हैं, तो चिंतक को अपने श्रुतक ज्ञान को समझना चाहिए। श्रुतक ज्ञान चिंतक होता है, उसमें विवेक अगर है तो अनेकांत का जन्म होता है, अगर विवेक खो गया तो एकांत का जन्म होता है। तो ये शाद्वार सिद्धांत का कथन आगम में क्यों किया? तो अपने स्वतः ज्ञान को विवेक पूर्ण बनाने के लिए इसका कथन किया। विवेक को जागृत रख करके ही इनका चिंतन करना चाहिए। विवेक भूल गए तो चिंतन आगे नहीं बढ़ेगा, फिर चिंतन आगे नहीं बढ़ेगा तो स्वयं जो चिंतक बन करके अपन कोशिश कर रहे हैं कि समझो समझो समझो, तो अपने मन में शंका ही शंका रहेंगे, कुछ हल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ऐसा निर्णय लेके बैठ जाते हैं अविवेक से, क्या कि रत्नत्रय से भी मोक्ष होता है, निर्णय लेके बैठ गए। तो फिर हम ऐसे निर्णय लेकर के बैठ चुके हैं तो हम भी लगाया है तो फिर अन्य किसी से भी मोक्ष हो सकता होगा, तभी यहाँ भी लगा है, ऐसा हमारा ज्ञान रहेगा श्रुता ज्ञान। तो हम क्या कोशिश करेंगे, अन्य से भी हो सकता होगा इसलिए तो यहाँ भी है, इसलिए अन्य से भी हम प्रयत्नशील बनेंगे। यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से भी होता होगा, किसी न किसी रूप से वो भी कोई मार्ग होगा, ऐसे संशय में पड़ेंगे। तो जहाँ विवेक नहीं है वहां पर संशय उत्पन्न होता ही है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान क्लियर नहीं है। तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान क्लियर हो और विवेक जागृत हो, इस उद्देश्य से जैन धर्म में इन तत्वों का व्याख्यान किया है। अनेकांत बड़ा काम का है, कभी भी हमें एक विवेक छोड़ करके चिंतन नहीं करना चाहिए, विवेक को साथ लेकर के। विवेक यानी क्या, ये ठीक है क्या नहीं, यदि ठीक है तो विवेक भी है, ये ठीक है क्या नहीं उसका संशोधन करना, यदि ठीक है प्रमाणित है तो विवेक भी उसके साथ में है, और यदि जो सोचा था जो चिंतन किया था वो गड़बड़ाने लगा और उसमें एकांतपन आने लगा तो निश्चित समझ लेना अपने विचारों में विवेक नहीं था इसलिए ये गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ ज्ञान को त्याग करना, क्योंकि वो गड़बड़ ज्ञान लड़बड़ ज्ञान है, उसको त्याग करना और सम्यक ज्ञान को, ऐसा कभी नहीं करना कि हमने जो कुछ चिंतन किया है हमारा सत्य है। अरे संशोधन किए बिना कैसे जजमेंट ले लिया अपना ज्ञान सत्य है, तो प्रमाणित तो करो उसको, आगम से प्रमाणित करो, चर्चा से प्रमाणित करो, तर्क से, अनुमान से, आगम से, इन सब से प्रमाणित अगर ज्ञान आपका प्रमाणित सिद्ध हो गया तो बिल्कुल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विवेक सब कुछ है वहां। तो परीक्षा बुद्धि जैन धर्म में अति आवश्यक है, ये कहा है परीक्षा बुद्धि, संशोधन बुद्धि जैन धर्म परीक्षा प्रधान है, या ऐसा वैसा ही चलता आता है सब, उसमें सब चल जाता है, हा? देखो आप दुकान में जाते हैं, एक नारियल भी खरीद रहे हैं तो एक कंकर लेते हैं, कट 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 बजा के लेते हैं, हाँ ये ठीक है, ठन ठन आवाज आ रही और डब 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 आवाज आ रही हो तो उसको वहीं रख देते हैं। ये परीक्षा बुद्धि किस लिए चाहिए आपको? वस्तु खरीदते समय परीक्षा बुद्धि रखते हैं, और धर्म तो रत्न है, सबसे मूल्यवान रत्न है, इस मूल्यवान रत्न को खरीदते समय यूं ही उठा करके भाग जाओगे, गलत भी निकल सकता है ना, तो उसकी परीक्षण करके ही ग्रहण करने के लिए ये सब कथन किया है। सात प्रकार से परीक्षा करो, सात प्रकार से, अस्ति कथन से, नास्तिक कथन से, ये परीक्षा करके धर्म को स्वीकार करो। अनेकांत को स्वीकार करना हो तो फिर अनेकांत का स्वरूप समझो, वो भी कितने प्रकार का है ये समझो, एकांत को भी समझो, एकांत भी कितने प्रकार का है ये समझो, वो दो दो प्रकार के हैं, अनेकांत भी दो प्रकार का और एकांत भी दो प्रकार का, ये सब दो दो प्रकार का है, ऐसा ज्ञान होकर उसका स्वरूप मालूम हो तो कहीं भी आपका चिंतन भटक नहीं सकता। आपका विचार भटक नहीं सकता। आप धीरे धीरे पांव फूंक फूंक करके पांव रखेंगे, परीक्षा कर करके ले लेंगे हर एक विषय को, ऐसा होता है। इसलिए जिनवाणी में जितने भी विषय हैं वे सभी अपने हित के लिए हैं और वो सभी परीक्षित विषय, परिशुद्ध विषय, परीक्षा करके फिल्टर करके, मतलब ये डिस्टिलरी वाटर भी नहीं है, ये उससे भी परिशुद्ध वाटर है। हाँ, एक तरफ से पानी तपाया, भाप किया और भाप का बूंद बूंद टपक करके एक नली के माध्यम से आया और ग्लास भर गया, ऐसा पानी है जेंडर। पानी में नमक डालो और तपाने के लिए रख दो, नमक वाला पानी पी सकते हैं क्या? नहीं। समुद्र का पानी ले आओ, नमक तो है ही उसमें। समुद्र का पानी कोई पीता है क्या? नहीं। लेकिन पानी प्यास तो लगी है, अब कैसे पिए? तो पानी तो पीना है, तो मीठा पानी पीना है, उसको तो पी नहीं सकते, पी लेंगे तो उल्टी हो जाएगी, खारा है वो, तो क्या करना है? इसी पानी को पीना है, लेकिन कैसे पीना? शोध करके। क्या करना? लगाओ, सिगड़ी पर रखो नीचे, और एक पात्र रखो, उससे एक पाइप निकालो, एक ग्लास में छोड़ दो। जब आग लगाएंगे तो तप करके भाप भाप बन करके इधर गिरेगा, ग्लास भर जाएगा, जब नमक वहीं रहेगा पानी इधर आ जाएगा, तो फिल्टर हो गया। इसको पीना, इससे प्यास बुझती है, इसमें आनंद आता है, इसमें स्वास्थ्य बढ़ता है, इसमें सब कुछ आनंद ही आनंद, सुख ही सुख है। तो जिनेन्द्र भगवंतों ने बाष्प का पानी दिया है, उसमें एक जरा भी नमकीन चीजें नहीं है, ऐसा है जैन धर्म। मिलावट नहीं, बिल्कुल मिलावट नहीं। और अरहंत भगवान तो कहते हैं, देखो हमने तो तुमको ये वस्तु दे दिया, हमने तो छान के दिया है, लेकिन तुमको तो देख देख करके पीना है, ये छना हुआ है या नहीं, इतना भी नहीं देखोगे? नहीं। विचार किए बिना किसी भी विषय को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण किया हुआ विषय अनुकरण कहला सकता है, किंतु उससे धर्म नहीं होगा। महावीर भगवान ने कहा, मोक्ष चाहते हो तो दिगंबर बनो। तो दिगंबर क्यों बनना, उससे क्या फायदा है, क्या होता है उससे? तो कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा शुद्ध होता है, ये मालूम ही ना हो तो महावीर भगवान के कहने मात्र से दिगंबर बनो, मोक्ष होता है। तो कहने मात्र से बनना पड़ेगा, विचार तो बिल्कुल करना ही नहीं। तो ये अनुकरण से दिगंबर बनना और तप करना सरल है, लेकिन विचारक बनकर के दिगंबर बनना और वस्तुतः कर्म निर्जरा के लिए तप करना, ये अलग बात है, ये विचारक बात होती है। सही है ना? तो ऐसा ही है, मुनि धर्म, श्रावक धर्म, ये सभी धर्म, सभी धर्म विचार के बिना स्वीकार नहीं करना, उसकी सत्यता तक पहुंच कर ही उसको आचरण में लाना। हम रात्रि भोजन क्यों करते हैं, किस उद्देश्य करते हैं, इसको समझो तो पहले। जिन तीन चार लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया तो ये भी छोड़ने के लिए चलिए, तो अनुकरण हो गया। आपने क्यों किया, किसी ने पूछा तो आपको मालूम नहीं, तो ये केवल क्रियाकांड के रूप में आप कहते हैं ना रूढ़ी, उन्होंने किया इसलिए हमने किया, तो ये रूढ़ीवाद हो गया। रूढ़ीवाद से धर्म को स्वीकार नहीं करना, रूढ़ी अधर्म है, रूढ़ी अज्ञान है, अज्ञान पूर्वक रूढ़ी पूर्वक धर्म को स्वीकार नहीं किया जाता। धर्म को तो विचार करके स्वीकार किया जाता है, कोई भी क्रिया, रात्रि भोजन त्याग, श्रावक की प्रतिमाएं, देव दर्शन, मंदिर जाना, एक बार खाना, अष्टमी चतुर्दशी को ही उपवास एकासन करना, ये क्या है, उसी दिन क्यों, ऐसा विचार क्यों नहीं करते हम? उस उसी दिन रिकॉशन करना चाहिए ऐसा कहा है, तो कहा है इसलिए कर रहे हैं। खुद ने विचार नहीं किया, कभी विचार भी नहीं आया कि ऐसा क्यों करना चाहिए। जैन धर्म विचार करने को मजबूर करता है, जो विचारक होता है उन्हीं का कल्याण होता है, ये उपदेश देता है। टाइम हो गया जी।